بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مصر کا بحران اور نئے آئین پر ریفرینڈم۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، مصر میں 14 اور 15 جنوری کو نئے آئین پر ریفرینڈم ہوا۔ اس دوران تشدد میں کم سے کم 11 افراد مارے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ اخوان المسلمین کے طرفداروں کی ایک بڑی تعداد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ریفرینڈم کے نتائج کا باضابطہ اعلان اتوار کو کیا جائے گا، لیکن مصر کی وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ریفرینڈم میں 55% لوگوں نے حصہ لیا ہے، اور ابتدائی نتائج بتاتے ہیں کہ 95% ووٹروں نے نئے آئین کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ معزول صدر محمد مرسی کے دور میں پاس ہونے والے آئین پر ریفرینڈم میں 32% لوگوں نے حصہ لیا تھا اور 63% رائے دہندگان نے آئین کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ نئے آئین کے تعلق سے جس پر ریفرینڈم ہوا ہے، ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایک سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مصر کے عوام کی اکثریت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نئے آئین کا مسودہ کیا ہے، پرانے آئین کی کون سی شقیں حذف کی گئی ہیں اور کون سی شقیں بڑھائی گئی ہیں۔ لیکن رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ نئے آئین میں فوج کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آئین پر ہونے والے ریفرینڈم کے قانونی حیثیت کا جائزہ لیں گے، پھر اس بات پر گفتگو کریں گے کہ فوج کے لائے ہوئے سیٹ اپ نے آئین میں تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ معزول صدر محمد مرسی اگر حکومت چلانے میں ناکام رہے، عوام کی امنگوں کو پورا نہ کر سکے، انہوں نے قانونی تقاضوں کے مطابق عمل نہ کیا اور مخالف لیڈروں کے ساتھ اختلافات دور کرنے میں ناکام رہے، اور جس کے نتیجے میں فوج میدان میں آئی اور اس نے انہیں معزول کر دیا، اور فوج کے سربراہ اور موجودہ حکومتی سیٹ اپ کی یہ ساری باتیں مان لی جائیں تو بھی یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے کہ آئین کیوں تبدیل کیا گیا جس پر ریفرینڈم ہو چکا تھا۔ آئین بدلنے کے محرکات کیا ہیں؟ اگر نئے آئین میں جیسا کہ کہا جا رہا ہے فوج کے اختیارات بڑھائے گئے ہیں، تو کیا اس سے جمہوری حکومت پر مسلسل فوج کی تلوار نہیں لٹکتی رہے گی؟ جبکہ اس کے اختیارات محدود تھے تو اس نے عوام کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا، تو جب اس کے اختیارات بڑھ جائیں گے تو کیا کچھ نہیں کرے گی؟ مختلف سرکاری اور غیر سرکاری بیانات میں یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ جنرل عبد الفتاح السیسی صدارتی امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کئی اہم لیڈروں جیسے عمر موسیٰ اور تحریک تمرد کے لیڈروں نے اعلان کیا ہے کہ اگر جنرل السیسی صدارتی الیکشن لڑتے ہیں تو ان کی حمایت کی جائے گی۔ تو کیا یہ سب کچھ فوج کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے دہلی اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے ہندوستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کو۔ اسکائپ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کی جائے گی لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر علی جعفر زیدی سے، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ایک اور اہم تجزیہ نگار سجاد میر صاحب سے بھی ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا جائے۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
مصر میں اپوزیشن جماعتوں کے بائیکاٹ کے باوجود نئے آئین کے بارے میں دو روزہ ریفرنڈم بدھ کو مکمل ہو گیا اور ابتدائی سرکاری اعلان کے مطابق 95% رائے دہندگان نے نئے آئین کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، تاہم اس دوران ہونے والے ہنگاموں میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ پولیس نے 450 کے قریب لوگوں کو، جن میں زیادہ تر اخوان المسلمین کے حامی تھے، گرفتار کر لیا۔ الحیات ٹیلی ویژن کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان میجر جنرل عبدالفتاح عثمان نے بدھ کی شام اعلان کیا ہے کہ ریفرنڈم میں 55% سے زائد رائے دہندگان نے حصہ لیا ہے اور 95% سے زیادہ لوگوں نے نئے آئین کے مسودے کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ ریفرنڈم کے حتمی سرکاری نتائج کا اعلان اتوار کو کیے جانے کی توقع ہے۔ 53% مصری شہری ریفرنڈم میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل تھے، جن میں سرکاری اعلان کے مطابق 55% سے زائد نے حصہ لیا ہے۔ نیا آئین فوج کو مزید طاقتور بناتا ہے اور اس کے ذریعے فوج اپنا وزیر دفاع مقرر کر سکتی ہے، جس کی مدت 8 برس تک ہوگی، اور ساتھ ہی اگر سیویلین فوج پر حملے کرتے ہیں تو اس کا مقدمہ بھی فوج ہی چلائے گی۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق مصر کے نئے آئین کے اہم ترین نکات یہ ہیں: صدارت کی مدت 4 سال کی ہوگی اور کوئی بھی منتخب صدر 2 دور تک صدر منتخب ہو سکتا ہے، جبکہ پارلیمنٹ کو صدر کے مواخذے کا حق حاصل ہوگا۔ اسلام حکومت مصر کا سرکاری مذہب ہوگا، لیکن اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عقیدے کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ حکومت عورتوں اور مردوں کے درمیان مساوات کو یقینی بنائے گی۔ ملک میں مذہب، نسل، جنسیت اور جغرافیائی بنیادوں پر سیاسی جماعتیں قائم نہیں کی جا سکیں گی۔ نیا آئین مرسی کی ان آئینی تبدیلیوں کی جگہ لے گا جو مرسی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی معطل کر دیا گیا تھا۔ مصری فوج نے 3 جولائی 2013 کو منتخب صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر آئین معطل کر دیا تھا۔ اخوان المسلمین کے حامی فوج کے اس اقدام کو بغاوت قرار دیتے ہوئے صدر مرسی کی بحالی کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مرسی کی معزولی کے بعد مصر نے ایک دن بھی سکون سے نہیں گزارا اور اخوان المسلمین کے حامی ہر روز مظاہرے کر رہے ہیں۔ فوج نے مظاہروں کی شدت اور ہنگامہ آرائی میں اضافے کے بعد اخوان المسلمین کے بہت سے رہنما اور کارکنوں کو گرفتار کر کے اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دے دیا اور اس کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی، جس کے جواب میں اخوان المسلمین نے بھی ریفرنڈم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ حسنی مبارک کے سقوط نے مصر میں 3 عشروں سے جاری آمریت کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن مرسی حکومت کا خاتمہ اخوانی ماڈل کی شکست ثابت ہوا، جسے انقلاب مصر سے پہلے اور بعد میں مصر کے اندر اور باہر آمریت کا بہترین نیم البدل تصور کیا جا رہا تھا۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ مصر اس وقت پوری طرح سے 2 حصوں میں بٹ گیا ہے، جس میں ایک طرف اخوان المسلمین اور اس کے حامی ہیں، جس کے پاس مرکزی حکومت کے خلاف جدوجہد کا طویل تجربہ ہے، اور دوسری جانب مصری فوج ہے جو 1950 کے لگ بھگ ینگ آفیسرز ریولوشن کے بعد روایتی کردار سے ہٹ کر ایک قابل اعتماد عوامی ادارے کی حیثیت سے فوجی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتی چلی آ رہی ہے۔ اس کشیدہ صورتحال میں نئے مصری آئین کے بارے میں ریفرنڈم کے انعقاد نے ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال کو ضرور جنم دیا ہے کہ کیا آئین کی منظوری مصر میں تشدد اور بدامنی کے خاتمے پر منتج ہوگی، اور کیا مصر جمہوریت اور سیاسی استحکام کی جانب گامزن ہو سکے گا۔ بہرحال اس وقت مصر کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ نئے آئین پر ہونے والے ریفرنڈم کی کامیابی یا ناکامی نہیں، بلکہ جمہوری احساس کے مطابق تدوین کیے جانے والے ایک ایسے آئین پر عمل درآمد ہے جس پر تمام سیاسی گروہوں نے اتفاق کیا ہو۔ صرف ایسی ہی صورت میں سیاسی جماعتیں کشمکش سے دور رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت اور عوام کی مشکلات کے حل میں تعاون کر سکتی ہیں۔ لہذا فوج کو چاہیے کہ وہ اخوان المسلمین جیسے بڑے سیاسی گروپ کی اقتدار میں شراکت کو قبول کرے، جسے بہرحال مصری سماج میں کافی اثر و رسوخ حاصل ہے۔ بصورت دیگر مصر میں کوئی بھی آئینی مسودہ اور قانون سیاسی اور سماجی استحکام نہیں لا سکتا۔
بہرحال مصر میں ریفرنڈم میں ووٹ ڈالے گئے، اور حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ریفرنڈم میں حصہ لینے والوں کی واضح اکثریت 95% تک لوگوں نے ریفرنڈم میں آئین کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ مصر میں بحران اس وقت شروع ہوا جب محمد مرسی کے خلاف وہاں پر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی، اور تحریک کے تمرد اس حد تک بڑھی کہ فوج میدان میں آئی اور فوج نے صدر محمد مرسی کو معزول کر دیا، اور اس کے بعد عدلی منصور کو عبوری صدر بنایا، جو اس وقت عدلیہ کے چیف تھے۔ عدلی منصور کی عبوری حکومت نے خود عبد الفتاح السیسی کو جن کا اہم رول تھا صدر محمد مرسی کو معزول کرنے میں اور ان کی حکومت ختم کرنے میں، ان کو وزارت دفاع کا قلمدان دیا. لیکن جو ایام گزرے ہیں محمد مرسی کی معزولی کے بعد، ان میں اگر دیکھا جائے تو اصل اقتدار صدر کے پاس نہیں بلکہ وزیر دفاع کے پاس ہی رہا ہے. چنانچہ نئے آئین کے سلسلے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آئین خود وہاں پر انقلاب آنے کے بعد انقلابی حکومت نے، انقلابیوں نے ایک آئین تیار کیا تھا آمریت کے دور کا آئین ختم کر کے، اور اس پر ریفرنڈم ہوا تھا اور عوام نے اس کو منظور کر لیا تھا، تو نئے آئین کی ضرورت کیا تھی؟ نئے آئین کی ضرورت اس لیے تھی کہ جیسا کہ آپ نے ہماری رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا کہ نئے آئین میں فوج کے اختیارات بڑھائے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ مصر کے اندر سے جو رپورٹیں مل رہی ہیں ان میں تسلسل کے ساتھ سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں کے یہ بیانات نقل کیے جا رہے ہیں کہ وزیر دفاع السیسی نے صدارتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہاں کے جو لبرل رہنما ہیں جیسے عمرو موسیٰ اور دیگر لیڈران جو حسنی مبارک کے دور میں بھی حکومت میں شامل رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ تحریک تمرد نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر جنرل السیسی الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ان کی حمایت کریں گے. تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو پوری تیاری کی جا رہی ہے فوج کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور ایک تشویش خدشہ جو پایا جا رہا ہے انقلابیوں میں وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انقلاب مکمل طور پر سبوتاج کر دیا جائے اور ماضی کا ہی آمرانہ دور دوبارہ واپس لایا جائے. اس درمیان بہت دلچسپ جو موقف رہا ہے وہ امریکہ کا رہا ہے. امریکہ نے کھل کے جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ ہے مصر کا، اس کی حمایت نہیں کی ہے، بلکہ بعض اوقات امریکہ اور مصر کے موجودہ حکومتی سیٹ اپ کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی ملتی رہتی ہیں. لیکن امریکہ کے جتنے بھی اتحادی اس خطے میں ہیں وہ مصر کے موجودہ سیٹ اپ کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں. چنانچہ جیسے ہی فوج نے محمد مرسی کو معزول کیا ہے، ان کی حکومت کو برطرف کیا ہے اور عبوری حکومت قائم کی ہے، فوری طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے $12 ارب کی امداد عبوری حکومت کو دی، اور اس کے بعد جب عبوری حکومت نے اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے تو $9 ارب کی امداد کا دوبارہ اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اب ریفرنڈم جو محمد مرسی کے دور میں عوام کے ذریعے سے منظور کیا جا چکا تھا آئین، اس پر ریفرنڈم کرایا گیا اور نیا آئین متعارف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں ہندوستان کے ممتاز اسلامی اسکالر اور تجزیہ نگار ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. خان صاحب السلام علیکم. ظفر، ہاں، دہلی سے ہمارا رابطہ ابھی برقرار نہیں ہو سکا ہے. ڈاکٹر علی جعفر زیدی سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے رابطہ برقرار کیا گیا ہے. زیدی صاحب السلام علیکم.
السلام.
جی زیدی صاحب، مصر میں نئے آئین پر ریفرنڈم 14 اور 15 جنوری کو منعقد کیا گیا، اور اس ریفرنڈم میں جیسا کہ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ 55% ٹرن آؤٹ رہا ہے، 55% لوگوں نے حصہ لیا ہے، اور ابتدائی رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ 95% لوگوں نے آئین کے حق میں ووٹ دیا ہے. میرا سوال آپ سے اس ریفرنڈم کی قانونی حیثیت کے بارے میں ہے کہ اس ریفرنڈم کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
دیکھیے، ریفرنڈم پہلے بھی ہوا اور ریفرنڈم اب پھر ہوا ہے.
جی،
اور پہلے جو ریفرنڈم تھا اس کو بھی قانونی حیثیت اور اس کو جواز دیا گیا، اس کو بھی قانونی حیثیت इसलिए चल जाएगी कि अवाम की अक्सरियत अगर 55% वोट डालती है जिसमें से 95% इसको अप्रूव करते हैं तो कानूनी को जमहूरी हवालों से भी मिल जाएगी। असल में बात यह है कि इस वक्त इजिप्ट दो हिस्सों में वाजे तौर पर तकसीम हो चुका है और ये तकसीम तो चली आ रही थी लेकिन दबी हुई थी मुर्सी के वक्त में भी जो इलेक्शन के हवाले से वो आए और रेफरेंडम में पिछले में भी जो तकसीम हुई थी वो 49-51% के हवाले से थी वो या पूरी सोसाइटी तकरीबन निस्फ तकसीम हो चुकी है और उसमें जो मुर्सी के असल हार्ड लाइनर या सपोर्टर्स हैं वो कोई 20-25% से ज्यादा नहीं शुमार किए जाते और फौज को हटाने में या फौज के खिलाफ वहाँ की जो लिबरल फोर्सेस थी वो भी उस वक्त मुर्सी के साथ थी। अब वक्त के साथ हुआ यह है कि मुर्सी को जो हुकूमत मिली वो चला नहीं पाए
जी।
और चला नहीं पाए और उन्होंने आइन के जरिए बहुत से इख्तियारात अपनी मर्जात में मरकूज करना चाहे और उस उन इख्तियारात के हवाले से उन्होंने मुल्क को एक ऐसी शरीयत के नफाज के रास्ते पर डाला जो मिस्र के अवाम जो कि अक्सरियत वहाँ पर अकलियत भी हैं वहाँ ईसाई भी हैं बहुत बड़ा हिस्सा ईसाइयों का है और दीगर फिरके और मजाहिब और अकीदों के लोग बसते हैं तो मुर्सी साहब ने इख्तियारात लेने के बाद मिस्र के अवाम पर अपनी मर्जी की शरीयत नाफिज करने का जो खतरा की तरफ वो चले तो अवाम ने उसको रद्द भी किया और जो उस खित्ते में जो इमर्ज हो रही है सूरत हाल उसके भी वो उस तरह हक में नहीं थी और अमेरिका तो बहरहाल उनको ये एक अजीब यहाँ वहाँ की जो सूरत हाल है उसकी एक अजीब कैफियत ये है
जी।
कि मुर्सी या इख्वानुल मुस्लिमीन ये भी CIA की पुष्पनाही इन्हें हासिल रही है एक वक्त में इन्हीं के जरिए नासिर पे भी हमला करवाया गया था और ये हमेशा ये सऊदी अरब या एक खास किस्म की जो शरीयत है उसको ये फॉलो करते रहे और अमेरिका इनकी सपोर्ट करता था और ये वो जमाना है जब मजलूमी पार्टी के जरिए सोशलिस्ट इनकलाब सरकारों को के खिलाफ इन्होंने लाखों इंसानों को मजलूमी के जरिए मरवाया था पाकिस्तान में जमात इस्लामी के जरिए प्रोग्रेसिव फोर्सेस को मारने का प्रोग्राम था और इख्वानुल मुस्लिमीन इनके जरिए CIA अपना एजेंडा इजिप्ट में उसको आगे लेके बढ़ता था। एट द सेम टाइम जो आर्मी है वो भी अमेरिका की परवरदा है और तमाम जो एड है बिलियन डॉलर्स की 9 बिलियन वो हर साल उनको मिलती है तो अमेरिका में ये दोनों यानी फौज भी और मुर्सी या इख्वानुल मुस्लिमीन भी ये दोनों का जो आका है वो एक ही रहा है। अब उसने जो सूरत हाल में थोड़ी सी तब्दीली आई और वहाँ जो एक लहर चली थी तब्दीली की उसमें ये मौका मिला था इख्वानुल मुस्लिमीन को कि एक जमहूरी अंदाज से पूरे अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करने का उन्हें मौका मिला था और उस हवाले से अगर वो हुकूमत को लेके आगे चलते तो हुकूमत चलती रहती लेकिन उन्होंने बहुत जल्द वहाँ की अवाम की जो 52% और उसके अलावा जो इनके साथ लिबरल फोर्सेस थे उन पर इन्होंने अपना अकीदा मुसल्लत करने की जो कोशिश की और जिस तरह से इन्होंने फिर इन्होंने भी बड़ा तशद्दुद के जरिए चीजों को कुचलना चाहा तो ये मामला चला नहीं। अब फौज आ गई है फौज के हक में रेफरेंडम जो आइन का रेफरेंडम आज जो रिपोर्ट आई है कि वो आवाम ने उसके हक में फैसला किया है तो फौज भी पूरे इख्तियारात वापस लेना चाहेगी वो इख्तियारात जो कि पिछले रेफरेंडम में मुर्सी साहब ने लिए थे और फौज पूरे जोर के साथ मुल्क पर हुक्मरानी करना चाहेगी और इसकी पुष्ट पनाही में सऊदी अरब बहुत आगे आगे है
जी।
उसमें जैसा कि आपने भी फरमाया 12 अरब का इनको मदद की, उसके बाद फिर कुछ और अरब इनको दिए गए
जी।
और उस रीजन में कतर भी इनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो मिडिल ईस्ट की मशरूम वस्ता की एक बदलती हुई सूरत हाल है, उस पर गालमन सऊदी इस वक्त बहुत बौखलाया हुआ है और वो चाहेगा कि किसी ना किसी तरह से इजिप्ट की जो फौज है
जी,
उसके साथ अपना रابطہ मजीद मजबूत करे, क्योंकि ये एक हकीकत है कि मिडिल ईस्ट में ईरान एक ताकत के तौर पे इमर्ज हो चुका है और ईरान का अमेरिका के साथ एक बेहतर ताल्लुकात की जानिब एक सफर शुरू है। वो सऊदी अरब के हुक्मरानों को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा और वो बज़ाहिर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अमेरिका के भी खिलाफ हैं, जो वहाँ के प्रिंस मंदर हैं वो बयानात भी इसी तरह के, लेकिन अमेरिका की पुष्तनाई के बगैर सऊदी हुक्मरानों का तो वाली वारिस कोई नहीं है और बजाय खुद वो कुछ भी नहीं है, मगर वो प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका पर भी और उधर इसराइल के साथ उनके जो मरासम हैं उसमें भी वो कोशिश करेंगे कि तेजी लाए और इजिप्ट में अपनी फौज को वो सपोर्ट, इजिप्ट की फौज को सपोर्ट करते हुए वहाँ की सियासत पर असरअंदाज हों। ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि मिस्र के अवाम ने जमहूरियत का एक रास्ता जो इख्तियार किया है उस प्रेशर के नतीजे में जनरल सीसी को भी इलेक्ट होना पड़ेगा, सदर बनने के लिए भी अवाम के पास जाना पड़ेगा और अवाम के पास जाने के लिए वहाँ की लिबरल फोर्सेस ने भी इशारा दिया है कि वो इसको सपोर्ट करेंगे।
बहुत तो बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा।
चाहे वो फौज के हक में ही जाए
जी।
लेकिन सऊदी जो वहाँ पर नतीजा अपने हक में निकालना चाहेंगे वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है सियासी वो बहुत तेजी से बदल चुका है। सीरिया में दहशतगर्द
जैदी साहब, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे, आप लाइन पे रहिएगा। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहाँ हिंदुस्तान के मुमताज दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
जी जनाब, मिस्र में नए आइन पर रेफरेंडम हुआ है और उस रेफरेंडम में हुकूमत का दावा यह है कि 55% टर्नआउट रहा है और 95% राय दहिंदगान ने इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आइन के हक में वोट दिया है। इस रेफरेंडम की कानूनी हैसियत के बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि ये रेफरेंडम आपके ख्याल में कानूनी हैसियत रखता है या नहीं।
देखिए, इससे पहले कि मैं इसके बारे में रायजनी करूं, हमसे पहले जो मोहतरम तजिया निगार कुछ कह रहे थे मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। ये बड़ी अफसोस की बात है कि वो कह रहे हैं कि इख्वानुल मुस्लिमीन CIA के एजेंट थे और उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे और नासिर के ऊपर उन्होंने हमला किया। गालबन इन्होंने सिर्फ एक तरफा चीज़ें पढ़ रखी हैं, इनको मालूम नहीं है कि जो मंशियतुल बकरी इस्कंदरिया में जो हमला 55 में हुआ था वो खुद फौज ने करवाया था, वो खुद नासिर के लोगों ने करवाया था ताकि इख्वान मुस्लिमीन को बुरा कहा जाए। इख्वान मुस्लिमीन कभी भी CIA के एजेंट नहीं रहे और अब भी मुर्सी के आने के बाद भी जो इस तरह की मालूमात यहाँ वहाँ छपी हैं वो सब के सब जो है प्लांटेड है, वो उसमें कोई हकीकत नहीं है। दरहकीकत मुर्सी को कभी भी फौज ने और जो वहाँ की जो डीप स्टेट कही जाती है उसने हुकूमत करने ही नहीं दिया। इस तरह कहना कि उन्होंने अख्तियारात छीन लिए, इस तरह कहना कि उन्होंने वही सब डिक्टेटरियाना काम किए जो कि दूसरे लोग पहले कर रहे थे, मुबारक या सादात या नासिर, ये बिल्कुल गलत बात है और इससे मैं सख्त इख्तलाफ करता हूँ। अब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से ये इतला मिली है कि 95% लोगों ने वोट दिया और ये कि उसमें से 55% लोगों ने इसके मुआफ़त में वोट दिया।
हुकूमत ने जो कहा है वो ये कहा है कि 55% टर्नआउट रहा है,
गलत और झूठी है और ये तरह तरह के झूठ रोजाना बोलती है और हम तो इसको मुस्तकिल देखते रहते हैं, अरबी में देखते हैं। ये उनका कहना एकदम गलत है, जबकि जो आजाद जो 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 इदारे हैं उन्होंने कहा कि मुश्किल से चार और पांच फीसद लोगों ने वोट दिया है और मुस्तकिल जो है जो बूथ थे वो खाली थे। बहुत से ऐसे फोटो जो मौजूद है इसी वक्त इंटरनेट पर आप जाके देख लीजिए जहां पर कोई इंसान नहीं आया है, और बहुत से ऐसे इलाके हैं खास तरीके से जो देहाती इलाके हैं वहां पर कोई गया ही नहीं है। तो ये उनका दावा है और ये इस रेफरेंडम की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। ये एक फौजी हुकूमत का रेफरेंडम है, एक इनकलाबी हुकूमत का रेफरेंडम है जिसने के मुंतखब और शरी जो सदर था जिसको कि मिस्री अवाम ने अक्सरियत से अभी सिर्फ यानी दो साल पहले जिन्होंने उसको चुना था उसको फौजी ताकत के जरिए हटा करके उन्होंने ये नया रेफरेंडम कराया है, जबकि अभी तकरीबन डेढ़ साल पहले एक रेफरेंडम वहां हो चुका है जिसकी मेजोरिटी जो वहां के लोगों ने उन्होंने उसको बहुत ही आजाद रेफरेंडम में पूरी तरह से तायद की थी। और ये जो रेफरेंडम हुआ है इसकी जो है कोई भी आजाद जो है जो बाहर से लोग भी आए हुए हैं उन्होंने इनकार ही कर दिया कि हम ऐसी हालत में जबकि एक फौजी हुकूमत करा रही है हम इसमें शरीक नहीं होंगे ना इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसी के साथ साथ जो है जो नया जो दस्तूर उन्होंने बनाया है वो बहुत ही जो है मिस्र की जो तारीख है मिस्र की जो हेरिटेज है मिस्र का जो 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 एक एक रोल रहा है पिछले 1400 साल में उससे उसको काटता है, वो उसको बिल्कुल सेकुलर बनाता है, वो यानी वहां तक इतना भी इस्लाम उसके अंदर नहीं है जितना कि इस्लाम नासिर और सादात के और मुबारक के जमाने में था। वो एकदम उसको इंडोनेशिया के तकरीबन जो सुकारनो के बाद जो वहां पे सुहार तो आए थे उस किस्म का या तुर्की में जो जनरल जब हुकूमत कर रहे थे उसके जमाने में जो जिस किस्म का दस्तूर था वैसा लाया गया है उसको इस्लाम से काट दिया गया है। तो ऐसा और इसी के साथ साथ फौज को उसमें मुकम्मल अख्तियार दे दिए गए यहाँ तक कि जो 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 सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको कोई हक ही नहीं होगा कि फौज के मामलों में दखलंदाजी करे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फौज को इतना भी हक है कि किसी भी शहरी को किसी भी सिविल आदमी को अपने कोर्ट मार्शल में जाकर के उसका कोर्ट मार्शल करे। तो इस किस्म का कानून जो होता है इस किस्म का जो दस्तूर होता है वो शहरी हकूक के खिलाफ है वो इंसानी हकूक के खिलाफ है और एक फौजी हुकूमत का दस्तूर जो होता है वो किसी तरह से इस लायक नहीं है कि उसको कोई भी एतबार दिया जाए। और आज जो पाकिस्तान में मुशर्रफ के साथ हो रहा है जिन्होंने इसी तरह का इनकलाब किया था वो इन लोगों के लिए इबरत है और मैं समझता हूँ कि जल्द ही इंशाल्लाह वो वक्त आएगा मिस्र के अंदर भी कि इन जो सीसी जैसे जो लोग हैं जिन्होंने कि वहाँ की जो शरी हुकूमत है जो कानूनी हुकूमत है जो अवामी हुकूमत है उसको ख़त्म किया है और उसकी जगह वहाँ बैठ गए हैं। तो इस आइन इस दस्तूर की चाहे वो कुछ भी ये दावा कर ले कोई हैसियत नहीं रही।
बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। जैदी साहब, जनाब आपने बताया कि इस वक्त मिस्र का जो समाज है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। अब वो दो हिस्से हो सकता है कि दोनों में से कोई एक हिस्सा बड़ा हो दूसरा छोटा हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो दो हिस्से तकसीम हुए दो हिस्से बन गए हैं मिस्र के समाज के आवाम दो हिस्सों में तकसीम हुए हैं, तो ये खुद इनकलाबियों में दो हिस्से हो गए हैं या एक हिस्सा वो है जो इनकलाबियों की तरफदार है और दूसरा हिस्सा वो है जो जो साबिक आमराना निज़ाम था उसकी बाकियात का तरफदार है?
जी, वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग वो फिनोमेना है जिसको स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं उस बहस में तो नहीं जाऊँगा जो इख्तलाफात इन्होंने किए हैं, वो एक लंबी तारीख है। बहरहाल जो आज का सवाल है जिस तरफ आप मुझे मुतवज्जो किया, वहाँ पर जो सोसाइटी है उसका वो हिस्सा जो कुतब जिसको शहीद कहा जाता है और जो इख्वान मुस्लिमीन के रहनुमा वहाँ से हासिल करते हैं अपनी हिदायत उनकी तालीमात से, एक हिस्सा तो वो है और वो है जो उस तरह का निफाज शरीयत चाहता है जहाँ पर लोगों की गर्दनें उड़ाई जाएं, जहाँ पर लोगों के हाथ काटे जाएं, जहाँ पर लोगों को संसार किया जाए। और ये वो तबका है या आबादी की वो परसेंटेज है जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि फौज की आमरियत का दौर इतना लंबा रहा और हसनी मुबारक के वक्त में तो बहुत ज्यादा आजादियां सलब हो गई थी, तो लोगों ने फौज की हसनी मुबारक की मुखालफत ने जो सपोर्ट की मुखालिफ हुकूमतों को, उसने इन लोगों की, चूंकि मुनज़्ज़म जमात है, जैसे जमात इस्लामी एक डंडा बरदार फोर्स के तौर पर पाकिस्तान में रही, जैसे तालिबान गर्दने उड़ा रहे हैं और सबको जो भी उनसे इख्तलाफ करता है अकीदे का, उसके इमाम बारगाहें हों या मस्जिदें हों या ज़ियारत हों, मज़ार हों, वहां पर वो जाकर बम मारते फिरते हैं, तो वो मुनज़्ज़म है, उनकी पुश्तपनाई भी करने वाली जो ताकतें हैं मुनज़्ज़म है। तो चूंकि ये मुनज़्ज़म जमात थी और है, तो इसने लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों ने इनके हक में फैसला भी दिया, इन्होंने हुकूमत भी बनाई और हुकूमत फिर नहीं चलाई
जी।
ये वो हकायक हैं जो भी बहुत पुराने नहीं है, चंद महीनों की बात है, इनसे हुकूमत नहीं चली। और नहीं चलने की जो वजह है, हालांकि इनको माशी तौर पर भी बाहर से मिली, IMF ने भी इनकी मदद करना चाहिए, पूरी हिमायत इनको हासिल थी, लेकिन ये अपनी तरह का जो इस्लाम है, जो कि दुनिया के मुसलमानों की अक्सरियत इस शरीयत, इस तर्ज शरीयत को एक्सेप्ट नहीं करती, उसको आप किसी भी माशरे में मुसल्लत नहीं कर सकते। और आज के दौर में जबकि दुनिया बदल चुकी है
जी,
और दुनिया के मॉडर्न होकर, यानी एक तरक्की याफ्ता रास्ते पर गामजन है पूरी दुनिया ही, तो उसने आप कैसे लोगों के हाथ काट के उनकी गर्दनें काट
बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब।
तो इसके बाद से मैं समझता हूँ कि वहाँ की अक्सरियत सेकुलर है, सेकुलरिज्म की तरफ जाएगी, और ये जो आइन आया है इसको दिया गया है तमाम अकलियतों को, वहाँ पर अगर आपको यकीनन होगा, आज सबसे ज्यादा जो खौफजदा है लीबिया में और इजिप्ट में, वो अकलियत है शियों की, जो अपने आप को पड़ोसी से भी गैर महफूज समझते हैं और रियासत उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक ऐसा आइन जिसमें
अकलियतों
को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ईसाइयों के वहाँ चर्च चलाए गए हैं, तो ऐसा ही आइन वहाँ पर चल सकता है। आप वहाँ पर किसी भी तरह की मजहबी जनूनियत को नाफिज नहीं कर सकते।
बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। और नाजरीन, हमारा राबिता बरकरार हुआ है टेलीफोन लाइन के ज़रिए पाकिस्तान के ही सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार सज्जाद मीर साहब से। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी।
जी मीर साहब, मिस्र में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, नया आइन बन रहा है, उस पर रेफरेंडम हो चुका है, और अभी जैदी साहब ने यह बताया कि मिस्र का जो समाज है वो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा वो है जो बकौल जैदी साहब के इख़वानुल मुस्लिमीन का तरफदार है, इंतहा पसंद है, और दूसरा हिस्सा वो है जो लिबरल है, और ये जो लिबरलिज्म है वो मिस्र के जो समाजी ताना बाना है उसका तकाजा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
असल में जी, थ्योरी के तौर पे तो ये बात ठीक होती है
जी,
लेकिन इसका क्या किया जाए कि जब इलेक्शन हुए थे
जी,
उस इलेक्शन में 40% वोट अखवा ने लिए थे, 25% सल्फियों ने लिए थे
जी,
तो 65% फोर्सेस तो इस्लाम का नाम लेने वाली थी
जी।
अब कहना कि जब 65% वोट ये ले रहे हैं तो वहाँ सेकुलर फोर्सेस की बड़ी ताकत है, बड़ी हिम्मत है, हालांकि वो अल तहरीर पे बड़ा कब्जा जमाकर बहुत सी बातें कर चुके थे, बड़ी अजीब और गरीब बात है
जी।
मेरा ख्याल है मिस्र की सूरत को ना समझना है, इस वक्त यकीन तौर पर सल्फी टूट गए हैं अखवान के साथ से, और उनको सऊदी अरब की हमायत हासिल है और UAE की हमायत हासिल है और कतर की हमायत हासिल है। कतर ने पैसे इसलिए नहीं दिए कि उसने फौज पर इन्वेस्ट किया हुआ रूस, और दोनों मुल्कों ने $8 बिलियन और $4 बिलियन भेजे हैं, तो सऊदी या UAE की हमायत इनको है, अमेरिका की हमायत इनको है इस फौजी हुकूमत को, और ये फरमा रहे हैं कि CIA अखबार के साथ थी, और ये भी पाकिस्तान में जमात इस्लामी की डंडा फोर्स कह रहे हैं। मुझे याद है कि जब ईरान का इनकलाब आया था तो इमाम खमेनी के नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंचे, तो उन्होंने ये पैगाम दिया था कि हम आयतुल्ला खमेनी का पैगाम आयतुल्ला मौदूदी के नाम लेकर आए हैं। तो ऐसी सूरत जब के इंकलाबी फोर्सेस अपने आप को एक समझती हैं, ये किसी सेकुलर लिबरल लेफ्ट अप्रोच का कहना और खेच तान कर ये बताना कि मिस्री माशरा दो हिस्सों में बट चुका है, एक अजीब गरीब बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जमहूरियत फौज लाएगी, इलेक्शन होने के बाद जो लोग आए हैं उनका तख्ता उलट कर जो हुकूमत आई है
जी,
अमेरिका को उसे एक्सेप्ट करते हुए बड़ी दिक्कत हो रही है
जी,
वो बड़े लेवलात से काम लेते रहे हैं, बड़े हुआ करते रहे हैं। तो ये ना कहिए कि ऐसी सूरत हाल है, ये कहिए कि अमेरिका और इसराइल नहीं चाहते कि मिस्र की फौज जो है उस पर उनका कंट्रोल बरकरार ना रहे। मिस्र की फौज जब ये जीते थे तो फ्रांस के डिफारो अखबार में अगले दिन ये छपा था कि ज्यादा से ज्यादा ये मुर्सी की हुकूमत को एक साल बर्दाश्त करेंगे, इससे ज्यादा नहीं है।
जी, जी।
उन्होंने उस हुकूमत, अच्छा वो ठीक था, गलत था, सख्त था, नरम था, उसी मुबारक से तो अच्छा था भाई। अगर ऐसी बात थी, इलेक्ट होके आया था, उसने रेफरेंडम उसमें भी कराया था। ये फौज की बालादस्ती आप नहीं समझ सकते, हमने जो फौजी हुकूमतें भुगती है ना, मुशरफ भी, मुशरफ से पहले भी, हमें अंदाजा है कि ये हुकूमतें क्या करती हैं। जियाउल्लाह ने रेफरेंडम कराया था कि आप जहां तो कहें कि इस्लामी निजाम चाहते हैं, अगर आप इस्लामी निजाम चाहते हैं तो जियाउल्लाह 5 साल के लिए सदर हो गया। इन रेफरेंडम की कोई हैसियत नहीं हुआ करती। और मेरे ख्याल में मिस्र के माशरे में जो एक प्रोसेस चल पड़ा है, मगरब वाले पहले परेशान थे कि मौत है कि इस्लाम आ जाएगा, जैसे वो ट्यूनस में कहते हैं,
जितनी
पढ़ने की पहनने की इजाजत है, सूद की इजाजत है, और सुअर का गोश्त बिक सकता है, और शराब पे कोई पाबंदी नहीं होगी। तो वहां कलाटी वो भी इस्लामी पार्टी है, नहजा, नहजा तो खैर उसमें मराकश में ये बता रहा हूँ, ट्यूनस में तो नहजा नाम की पार्टी है, लेकिन अंदर से वो जिस तरह की अप्रोच है वो इस तरह का इस्लाम चाहता।
अच्छा, ये मीर साहब
के लोगों के लिए मुश्किल।
मीर साहब, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, नूर पार्टी तो अलग हो गई है इख्वान से, और जो मौजूदा सेटअप है उसके साथ है?
जी जी, बिल्कुल अलग हो गई है। ये एक और तमाशा है कि पहले वो सपोर्ट करती रही है, अब सऊदी के कहने पे अलग हो गई है
जी,
और पैसा भी उनकी मदद के लिए आ रहा है। वो बिल्कुल सल्फी है ना जी, नूर पार्टी तो सल्फी है, वही लोग हैं। तो मिस्र के माशरे में अगर सल्फी नहीं है, दूसरे लोग हैं, अख्वान नहीं है, तो बाकी लोग भी वहां तो सूफिया का बहुत बड़ा एक तबका मौजूद है। तो मिस्री माशरे को ना समझने वाली अल तहरीर स्क्वायर में फट गया था सेक्युलर तबका, लिबरल तबका। अब कहते हैं जी मिस्र का माशरा दो हिस्सों में बट गया है, तो माशरे में तो तसादम होता ही, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी लिबरल सेक्युलर जो है टीवी चैनल पर बैठकर इन दो अमेरिकन लॉबी की मदद के साथ बहुत सी बातें करते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं गिनी जाती थी। तो मेरा ख्याल में इस तरह का तजिया करना और इस तरह की बात करना कि उन्हें CIA का एजेंट करार देना, ये उम्मत के लिए, खुदा के वास्ते उम्मत के लोग सोचे। दुनिया भर में ईरान के इनकलाब को बहुत सराहा गया था और इसे इस्लामी इनकलाब कहा गया था, किसी ने इसे शिया इनकलाब नहीं समझा था। और आज भी ईरान के बारे में हमारे यहाँ लोगों की बड़ी तवक्कुआत है, और एक ऐसी आवाज कहना कि अफगान के लोग CIA के एजेंट थे, अब CIA के एजेंट थे तो CIA मदद क्यों नहीं कर रही उनकी? वो मदद कर रही है इसकी, जो अब वो CC क्या नाम उस कमबख्त का जो अब सदर बना हुआ है
जी,
वो उसकी मदद कर रही है, वो सऊदी अरब से पैसे दिला रही है, वो UAE से पैसे दिला रही है, कतर में जान के अड्डे हैं वहां। अच्छा, वहां एक प्रॉब्लम कतर का ये है कि उसने पैसे इसलिए दिए तो उसने फौज पे पहले इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये बांट बांट के जो कुछ कर रहे हैं, शाम की जो हालत कर रहे हैं, मिस्र की जो हालत कर रहे हैं, पूरे मशरक़ वुस्ता को इन्होंने बिल्कुल नचा के रख दिया है। हमारी छोटी बहरीन में, दूसरी जगहों पे ऐसी सूरत हाल हर जगह पर है, इसमें आपको भी तश्वीश है, हमें भी तश्वीश है, पूरी उम्मा को तश्वीश है।
बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब,
उम्मा के बारे में सोचने वालों को बड़ी एहतियात के साथ और बड़े मुहतात अंदाज के साथ तजिया भी करना चाहिए और सच्चाई के साथ सूरत हाल को समझना भी चाहिए, और ऐसी बात ना कहनी चाहिए जिससे एक नफाक की और तसादम की फजा पैदा होती नजर आए। वो सल्फी जो लोग हैं वो यकीन सऊदी अरब के कहने पर अलग है, लेकिन ये तो खैर वो पॉलिटिक्स है जिससे हमारा कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। खान साहब, मिस्र में इस वक्त जो खुद मजहबी जमाते हैं, जैसे नूर पार्टी है जो इख्वान के साथ रही है, वो इख्वान से अलग होके अब तो मौजूदा हुकूमती सेटअप के साथ है, तो ये जो आप देखें कि खुद जो इनकलाबी कुव्वतें और इस्लामी कुव्वतें वहां मुंतशिर हो गई हैं, इनके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है?
देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है कि नूर पार्टी अब भी फौजी हुकूमत के साथ है। वो शुरू में जिस वक्त इनकलाब आया था 3 जुलाई को, उस वक्त साथ थी, लेकिन अब जबकि नया जो दस्तूर आया है उसके बाद वो अलग हो गई हैं। अगरचे वो इख्वान के साथ नहीं है, लेकिन अब वो फौजी हुकूमत का साथ नहीं दे रही हैं। ये बात अगर किसी को नहीं मालूम है तो अफसोस की बात है। और ये कहना कि जो इख्वान थे वो हाथ काटने वाले थे और सर काटने वाले थे, ये इंतहाई गलत बात है। जो हाथ और सर काटने वाला है वो तो आज की हुकूमत है। ये 3 जुलाई से लेकर आज तक उन्होंने 1000 लोगों का कत्ल किया है। कौन सी हुकूमत दुनिया की है जो कि अपने लोगों को इस तरह से मारती है? कौन सी हुकूमत है जो कि निहत्थे लोगों को मारती है। मुर्सी के ज़माने में तो किसी का कत्ल नहीं हुआ। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने ईसाइयों के चर्चों पे हमला किया, ये बात गलत है। ईसाइयों के चर्चों में वही डीप स्टेट जो कि जिसने इनके खिलाफ इनकलाब किया उसने किया, ये बात साबित है कि मुबारक का जो वजीर दाखिला था अल आदली, उसने जो है वहाँ पर इस्कंदरिया में हमला कराया था। तो ये इस तरह के इल्ज़ाम देना बहुत ही गलत बात है। ये कहना कि सैयद कुतुब शहीद जो है उनका जो फिक्र था वो इख़वान का है, ऐसा नहीं है। वो उनका फिक्र जो था वो इख़वान का एक हिस्सा था, लेकिन जो मेन स्ट्रीम इख़वान है, जो हसन हुदैबी के इख़वान है, जो हसन अल-बन्ना के इख़वान है, जो तिलमिसानी के इख़वान है, वो इख़वान उन बातों पर यकीन नहीं रखते हैं। वो बहुत ही रोशन ख्याल और बहुत ही मुतदिल थे, और इसी वजह से उनका तख्ता उल्टा गया कि अगर ये लोग वहाँ पर बैठ जाएंगे और हुकूमत ठीक से करेंगे तो सारी दुनिया में, सारे आलम इस्लाम में इस्लाम आएगा, और इसी वजह से इनकलाब यह आया है। जनाब अली, इस वक्त मिस्र में कोई भी इंतशार इतना बड़ा नहीं है। छोटे हर मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ लोग किसी के साथ होते हैं, किसी के खिलाफ होते हैं। अक्सरियत आज भी इख़वान मुस्लिमीन के साथ है। अगर ऐसा ना होता तो ये इख़वान मुस्लिमीन को बैन न करते। ऐसा ना होता तो इसी जो दो दिन पहले जो रेफरेंडम हुआ है उससे, उसी दिन जिस दिन शुरू हुआ है उस दिन उन्होंने 444 आदमियों का जो इख़वान मुस्लिमीन के मेंबर हैं उनको गिरफ्तार किया है, और उससे पहले जो हज़ारों तकरीबन 15-20 हज़ार जो गिरफ्तार हो चुके हैं वो अलग हैं, जिनके खिलाफ मुहाकमा हो रहा है वो अलग हैं। तो जो खून और जो हाथ और खून जो चाहने वाले लोग हैं वो ये फौजी लोग हैं, जिनकी के अफसोस है कि जरिए साहब जैसे लोग तायद कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि इस किस्म के चैनल में इस तरह की बात हो। ये तो अमेरिका वाली बात है, ये फ्रांस वाली बात है, ये इस्लाम पसंद लोगों की बात नहीं है। वो लोग वैसे ही इस्लाम पसंद थे जैसे कि ईरान के लोग हैं, जैसे कि और जगहों पर हैं। वो तालिबान के लोग नहीं थे, तालिबान के लोग अलग हैं। हाथ पांव काटने वाले लोग जो है तालिबानी, हम कोई कतन उसकी तायद नहीं करते हैं। और जो रोशन ख्याल जो वहाँ के इख्वानी थे वो बहुत ही सही रास्ते पर चल रहे थे, और इसी वजह से उनके खिलाफ जो है ये सारा जो सारी बगावत कराई गई उनको हटाया गया, आज उनको जेलों में भेजा गया। क्योंकि इस तरह का इस्लाम जब आ जाएगा जैसे कि ईरान में आया था, तो सारे आलम इस्लाम में एक तब्दीली आ जाएगी। और मिस्र में अगर इस तरह का निज़ाम कायम होता है तो आप जानते हैं उसका दूर दूर तक कम से कम अरब ममालिक, जो 23 अरब ममालिक हैं, सब में असर पहुँचता है। इसलिए उनको इस तरह से ख़त्म कर दिया गया। इसलिए इस तरह की बात से मुझे बहुत ही दुख हुआ है कि इस तरह की बात आपके चैनल पर कही जाए।
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, और उसी के साथ सज्जाद मीर साहब और जैदी साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं। हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम दिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे मेहमान जो बातें कहें वही मौक़िफ हमारा भी हो। ये तो एक बहरहाल बहस तलब मौजू है, और इख़वान के बारे में और जो वहाँ पर जो मज़हबी जमातें हैं उनके बारे में भी मुख्तलिफ आरा लोगों की पाई जाती हैं, और जो मौजूदा हुकूमत है इसके सिलसिले में भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। लेकिन इस दरमियान अमरीका और साम्राज्य ताकतों का जो मुनाफिकाना किरदार है वो काबिल गौर है, और ये देखना पड़ेगा कि ये ताकतें किसके साथ हैं। इसी के साथ प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।